कृष्णा भक्ति बहुत सरल हो गया उनके लिए, क्योंकि उनके पास वो रिनाउंसिएशन स्पिरिट था। तो जब तक ये रिनाउंसिएशन स्पिरिट नहीं है, तब तक ऐसे चीज को छोड़ना इट्स नॉट पॉसिबल है। तो वो इमीडिएटली जब सोचा कि मेरे को छोड़ना है, इमीडिएटली उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, छोड़ के चले गए बुला आश्रम। और वहां पे फिर जो है
कौन सा आश्रम?
बुला आश्रम। तो उधर जाके फिर वो भजन किए पूरा तरह से, मतलब एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो जो सुबह हर रोज सुबह उठे अपने साधना अपने सब कुछ करते थे, तो गंडकी रिवर, गंडकी नदी के पास है वो। और वहाँ पे आप जानते हैं गंडकी नदी में बहुत वो मिलते हैं शालीग्राम, है ना, वहाँ से उनको भी मिले थे ना, कौन
गोपाल
गोपाल भट्ट गोस्वामी का ड्यूटी। तो गंडकी नदी के पास में फिर वहाँ पे अभी हम कुछ पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं फिर। तो वहाँ पे जाके क्या हुआ, वो अकेले थे, बोलिए अकेले वहाँ पे भजन कर रहे थे पूरा तरह से, एब्जॉर्ब थे और बहुत एडवांस भी थे। एडवांस थे तभी तो छोड़ पाए सब कुछ, मटेरियल सब, इतने ऑपुलेंस सब छोड़ा, और सब छोड़ के वहाँ पे गए। और वहाँ पे जाके कुछ भी नहीं है एक तरह से, उसमें रहने लगे। कैसे रहने, सिर्फ कृष्ण भक्ति के कारण, भगवान के प्रति अट्रैक्शन के कारण वहाँ पे रहने लगे। और उनके अपने जो साधना तपस्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ जो आप सबको पता है ना। लेकिन उस इंसिडेंट को आप तो पढ़ते हैं, लेट अस रीड, ठीक है। तो उसको मैं आप लोगों से पढ़ाने वाला था, लेकिन मेरा फिफ्थ कैंटो एक्चुअली यहाँ पे था। तो जी आपके रूम में मैंने पिछली बार लाया था ना फिफ्थ कैंटो, तो आपके रूम में शायद मैंने छोड़ दिया गलती से कैंटो। तो अभी तो रहने दो, और मैं ऊपर जब क्लास खत्म हो जाएगा तब हम लेंगे। मोबाइल में भी है ना, तो अभी बताएंगे, आगे आगे बताएंगे। तो इसमें उस श्लोक नंबर 5.8 चैप्टर खुलते हैं, फोर्थ श्लोक से पढ़ेंगे।
मुझे एक चीज
सिर्फ अनुवाद पढ़ेंगे हम लोग।
आप
कहीं जगह भी प्रभुपाद ने वो भी लिखा है, कहीं जगह पे
प्रभुपाद जी ने इसी पर लिया। और भी मानते कि जो महाराज भरत के कारण, भरत जो नाभि के पुत्र के,
लेकिन कहीं और जगह भी प्रभुपाद ने उनका भी बताया दुष्यंत के जो, ठीक है।
मृगी स्वभाव से अन्यों द्वारा वध किए जाने से डर रही थी और लगातार शंकित दृष्टि से देख रही थी। जब उसने सिंह की दहाड़ सुनी तो वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी। चौकन्नी दृष्टि से इधर उधर देखकर वह मृगी अभी जल पीकर पूर्णतया तृप्त भी नहीं होती कि सहसा उसने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। मृगी गर्भवती थी, अतः जब डर के मारे वह कूद पड़ी तो शिशु मृग उसके गर्भ से निकलकर नदी के बहते जल में गिर गया।
तो एक श्लोक आप करो फिर पास कर दो, फिर वो करेंगे फिर पास कर दो।
अपने झुंड से विलग होने तथा गर्भपात से त्रस्त हो जाने से वह
कृष्णा मृगी नदी को पार करके अत्यंत भयभीत हुई, अतः एक गुफा में गिरकर वह तुरंत मर गई।
नदी के तीर पर बैठे हुए महान राजा भरत ने अपनी माँ से पिछले बच्चे को नदी में उतारते देखा। ये देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने विश्वास पात्र मित्र की भांति उस नन्हे शावक को लहरों से निकाल लिया और मात्रहीन जानकर वे उसे अपने आश्रम में ले आए। धीरे धीरे महाराज भरत उस मृत के प्रति अत्यंत वात्सल्य होते गए। वे घास चला चलाकर उसका पालन करने लगे। वे बात तथा अन्य हिंस पशुओं के आक्रमण से उसकी सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहते थे। जब उसे खुजली होती तो वह सहलाते और उसे आरामदेह स्थिति में रखने का प्रयत्न करते। कभी कभी प्रेमवश उसे चूमते भी थे। इस प्रकार वृद्ध के पालन पोषण में आसक्त हो जाने से महाराज भरत आध्यात्मिक जीवन के नियम नियम भूलते गए। यहाँ तक कि धीरे धीरे भगवान की आराधना भी भूल गए। कुछ दिनों बाद वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सब कुछ भूल गए।
महान राजा भरत सोचने लगे, अहो बेचारा यह मृग शावक भगवान के प्रतिनिधि काल चक्र के वेग से अपने संबंधियों तथा मित्रों से विलग हो गया है और मेरे शरण में आया है। यह अन्य किसी को ना जानकर केवल मुझे अपना पिता माता भाई तथा स्वजन मानने लगा है। मेरे ही ऊपर इसकी निष्ठा है। यह मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, अतः मुझे ईर्ष्या बस यह नहीं सोचना चाहिए कि इस मृग के कारण मेरा अकल्याण होगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका लालन पालन रक्षण करो तथा इसे दुलारो पुचकारो। अब जब इसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है तो भला इसे मैं कैसे दुपकारूँ। यद्यपि इस मृग से मेरे आध्यात्मिक जीवन में व्यतिक्रम हो रहा है, किंतु मैं अनुभव करता हूँ कि इस प्रकार से कोई असहाय व्यक्ति यदि शरणागत हो तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, तब तो यह बड़ा भारी दोष होगा।
You can read Hindi?
भले ही कोई संन्यास ले चुका हो किंतु जो महान है वह निश्चित रूप से उनकी जीवात्मा के प्रति दया का अनुभव करता है। मनुष्य को चाहिए कि शरणागत की रक्षा के हेतु अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह न करे।
मृग के प्रति आसक्ति बढ़ जाने से महाराज भरत उसी मृग के साथ लेटते टहलते स्नान करते यहाँ तक कि उसी के साथ खाना नहीं खाते। इस प्रकार उनका हृदय मृग के स्नेह में बन गया।
जब महाराज भरत को पुष्प फूल लकड़ी पत्ते फल कल तथा जल लाने के लिए जंगल में जाना होता तो उन्हें भय बना रहता कि कुत्ते सियार बाघ तथा अन्य हिंसक पशु आकर मृग को मार न डाले, अतः वे जंगल में जाते समय उसे अपने साथ ले जाते।
जंगल के मार्ग में वह मृग अपने चपल स्वभाव के कारण महाराज भरत को अत्यंत आकर्षक लगता। महाराज भरत उसे अपने कंधों में भी चराकर स्नेहवश दूर तक ले जाते। उनका हृदय मृग प्रेम से इतना पूरित था कि वे कभी उसे अपनी गोद में ले लेते तो कभी सोते समय उसे अपनी छाती पर चराए रखते। इस प्रकार उस पशु को दुलारते हुए उन्हें अत्यधिक सुख का अनुभव होता था।
जब महाराज भरत ईश्वर की आराधना में या अन्य अनुष्ठान में व्यस्त रहते तो अनुष्ठानों को समाप्त किए बिना बीच बीच में ही वे उठ जाते और देखने लगते कि मृग कहाँ है। इस प्रकार जब वे देख लेते कि वह मृग सुखपूर्वक है तब कहीं उनके मन तथा हृदय को संतोष होता और तब वे उस मृग को यह कहकर आशीष देते, हे वत्स, तुम सभी प्रकार से सुखी रहो।
ठीक है तो और एक कर लो, आप ही कर लो।
कभी कभी भरत महाराज यदि उस मृग को न देखते तो उनका मन अत्यधिक अत्यंत व्याकुल होता, उनकी स्थिति उस कंजूस व्यक्ति के समान हो जाती जिसे कुछ धन प्राप्त हुआ हो किंतु उसके खो जाने से वह अत्यंत दुखी हो गया। जब मृग चला जाता तो उन्हें चिंता हो जाती और वियोग के कारण वे विलाप करने लगते। इस प्रकार मोहग्रस्त होने पर वे निम्नलिखित प्रकार से कहते हैं।
ठीक है, तो उसमें हमें क्या सीखने को मिलता है, ये जो स्टोरी से क्या सीखने को मिलता, आपको क्या सीखने को मिलता कि
संसार में जो व्यक्ति रहता है वो भी साथ में वैसे भौतिक संसार में जो व्यक्ति अपनी फैमिली और परिवार और वो सब में तो इसी तरह वो भी मान के चलता है कि मैं नहीं रहूँगा तो उसके बाद इसका क्या होगा, ये मेरे ही आश्रित है या मेरे पर ही इससे पूरा मतलब भरोसा इसका है और ये मेरे से ही जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं पिछले जन्म या इससे जन्म इसको मेरे लिए ही लिया हुआ, तो इस तरह का अटैचमेंट रहता है।
ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका पालन पोषण करूँ।
इसमें थोड़ा मेरा पहले पढ़ा हुआ था तो कुछ से तो जो मुझे लगता है कि इस केस में भरत महाराज ने मेरे को बचाया तो उसमें मुझे लगता है गलत नहीं किया कि अगर कोई जीव को ऊपर दया दिखाई उन्होंने तो ठीक ही किया, बचाते छोड़ते देते नहीं उनको। मगर उसमें बता रहे कि इन्होंने क्या धीरे धीरे प्रोसेस छोड़ दिया, यज्ञ करते थे वो छोड़ दिए और जो प्रोसेस उन्होंने छोड़ना शुरू किया ना तो वहाँ से सारा
बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे उनका क्या होने लगे, उन्होंने अपनी जो साधना
को छोड़ दिया,
अपने तपस्या को पे डिस्टरबेंस होने लगे और डिस्टरबेंस को वो एक्सेप्ट करने लगे तो वो उसमें साधना में कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया। तो जब साधना में कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया तो वो चीज अटैचमेंट जो है, जो अनड्यू अटैचमेंट है वो बढ़ने लगा। तो वो अटैचमेंट बढ़ने लगा, अनड्यू अटैचमेंट जो वो नहीं होना चाहिए और उसके कारण यही है कि जो है उनका साधना वीक होने लगा। और साधना वीक होने का जो है आगे का सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। क्या आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, आपने आपको और कोई पॉइंट बताओ, आप लोग बताओ। हाँ, वेरी इम्पोर्टेंट,
उनको बताने वाला नहीं था, जैसे कि उन्होंने जिनके प्रति दया की तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर उनके कोई साथ होता तो उनको बताता कि देखिए ये आपके जीवन का परम लक्ष्य नहीं है।
हाँ, ये उसका लिमिट इतना है, आपको इतना तक ही करना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना। आप यहाँ तक है ठीक है, आपका कॉम्पिटिशन है आपका वो, लेकिन उसका एक लिमिट होता है, आप उस लिमिट उसके हिसाब से आप कॉम्पिटिशन करो, जहाँ तक आपका पॉसिबल है, लेकिन उसके अगर आप एक्सीड कर जाओगे, यू गो बियॉन्ड दैट, देन यू योरसेल्फ विल बी इंडेंजर्ड। तो ये चीज बताने वाला कोई नहीं है, वेरी गुड। उनको सुनने का कुछ था नहीं, जो सोचते थे वही उनके लिए क्या है, मतलब सुप्रीम था, वही चीज मतलब वो करते थे, क्योंकि उनको कोई और सुनने के लिए कोई था नहीं, कहीं से कोई गाइडलाइंस नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था।
तो यहाँ पे एक बात आती है, जैसे बताया जाता है कि जनरल में तो एकांत की भक्ति के लिए मना किया गया, पर जो इस स्टेज पे थे जो कि एकदम से विरक्त थे उस टाइम, जब वो घर छोड़ा उन्होंने तब तो वो विरक्त थे, तो उस स्थिति में तो अलाउ किया गया ना कि एकांत की भक्ति कर सकते हैं, तो बट फिर इनका पतन इस तरह से एकदम से कैसे हो गया?
तो यही बताया कि एकांत में हमें फिर उस स्टेज में तो फिर हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना, कि जो आपने पिछले बार पढ़ा था कि माइंड को इतना वो करना है कि माइंड को ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो एवरीथिंग इट शुड बी आइडियली उस स्टेज में दे विल नॉट बी अट्रैक्टेड। ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसे समझा रहे हैं कि उस स्टेज में जाके भी, भाव की स्टेज में जाके भी हो सकता है, बहुत रेयर पर पॉसिबल। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जो है ना कि एडवांस डिवोटी भी जो है भगवान के बारे में सुनना कभी बंद नहीं करता, आत्मानाम भी जो है भगवान के बारे में सुनते रहे, वो अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते रहे। तो अपनी कॉन्शियसनेस पे वो ऐसे नहीं करते कि आप मैं पूरा हो गया, आप कोई और चीज चाहिए, वो संग भी समहाउ और आधार को लेते हैं, चाहे डायरेक्टली नहीं भी है तो शास्त्र के माध्यम से, या है ना जो है अपनी प्रीवियस आचार्य की प्रेयर्स से। आप देखेंगे प्रभुपाद अकेले थे, लेकिन प्रभुपाद हर समय क्या है ना, वो पूरा आचार्यों का हमेशा लगा के रखते थे और हमेशा जो है उनसे प्रेयर्स करते रहते। तो प्रभुपाद वाज इन टच, इन टच विद कृष्णा, अपने स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद कहते कभी मैं अकेले था ही नहीं, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर वाज ऑलवेज विद। तो जब हम अकेले हैं तो और हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है, कि इसके मतलब डेंजर को बताया कि अकेले कितना डेंजर हो सकता है, क्योंकि वहां पे हमें करेक्ट करने वाला कोई नहीं है। और जब तक प्रभुपाद, जब तक हम मेटेरियल बॉडी में है और जब तक हम प्रेम की स्टेज तक नहीं पहुंचे, ठीक है, तो ये बहुत रेयर केस है। पर उस इसलिए हमें समझ में आया कि उस स्टेज में अभी अगर ऐसा है तो हमारे लिए क्या है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कुछ समझो कि अगर उनको बताने वाला कोई भी होता तो इमीडिएटली उनको रियलाइज हो जाता, उनके इतने सारे नॉलेज है, जिस नॉलेज के कारण उन्होंने सब कुछ त्याग करके आए, उनको इमीडिएटली वो याद आ जाता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, सच तो व्हाट इज दिस, व्हाट नॉनसेंस आई एम डूइंग, तुरंत उनको याद आ जाता। पर ये बोलने वाला कोई नहीं था।
कहानी भी आता है, गुरु अपने शिष्यों को सिखाने के लिए तुम ला सकती है उसको कॉपी में गम सा चेंज करके लगा तुम्हें जाता है, शुरू होती सारे विषय पर लड़ाई करने लगता है, तो ऐसा जनरल टेंडेंसी देखा जाता है कि हम सारा कुछ बड़ा डिसीजन लेते हैं सब कुछ छोड़ देते हैं, और फिर जब भक्ति में जाते हैं पूरी तरह से तो छोटे छोटे चीज से आसक्ति हो जाता है, डेवलप होने लगता है। जनरल टेंडेंसी सब में होता है ऐसा, और इवन बताने पे भी छोड़ना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे तो बताने वाले को नहीं था, बताते भी तो भी मुश्किल हो जाता है।
तो बताने में तो एटलीस्ट मुश्किल होता है, लेकिन उस स्टेज में जो डिवोटी को एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी तो मिलता है कि विचार करने के लिए अपॉर्चुनिटी तो मिलता है कि यार कोई मुझे बता रहा है सही क्या है। और
मुझे उस टाइम पे तो जो भी लोग थे सारे जो सेल्फ रियलाइजेशन में थे वो अकेले ही जाते थे,
हर समय ऐसे नहीं, जिसे नारद मुनि का उस समय देखते हैं कि वहाँ पे भी कहीं भक्ति में सब एक साथ में होते थे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर समय। तो वो जाते थे हाँ एकांत में जाते थे, लेकिन किसी सुखदेव गोस्वामी मतलब जाते थे, लेकिन कोई से मिलते थे, हाउस होल्डर्स के पास जाते थे कहीं वो फिर मिलते थे ऐसे। और उस समय उनके पास ऑफकोर्स पावर भी होता था, तो कहीं मतलब कॉम्बिनेशन है, कहीं तरीका से आप उसको देख सकते हैं, कहीं तरीका से कहीं रीजन कॉम्बिनेशन होके ये चीज, ये जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर ये चीज होता तो भी प्रोटेक्शन हो जाता, लेकिन अकेले हैं तो और केयरफुल रहे कि हमें कोई भी चीजों से, इसलिए आगे हमें पता चलेगा कि जरा भरत की उसमें वो इतना केयरफुल थे, वो किसी चीज से अटैच नहीं हो रहे। तो जब उस स्टेज में जो जा रहे हैं छोड़ के, तो जो अकेले जाते थे दे यूज्ड टू बी कंप्लीटली डिटैच्ड, तो उससे कोई भी चीजों के प्रति वो अटैचमेंट नहीं करते। लेकिन हमारा उस स्टेज में नहीं है, हम लोग हमारे तो कहीं भी जाएंगे जिसे उन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीजों में अटैचमेंट हो जाता है, इसलिए हमें एसोसिएशन इज मस्ट। तो एसोसिएशन होता है क्योंकि हमें एक हर एक स्टेप में करेक्शन की जरूरत है, उस समय तो वो कभी कभी ऐसे स्टेज हो जाता था, अदरवाइज दे आर फुल्ली रियलाइज्ड कि क्या करना है, गलती नहीं होता था। और नारद मुनि बीच बीच में पहुंच जाते थे, है ना, कहीं कुछ उसमें कर रहे थे, नारद पहुंच जाते थे, करेक्ट कर देते। तो उस समय बहुत मतलब गलती होने का भी चांस बहुत रेयर होता था, और इसलिए एसोसिएशन भी ऑकेशनली रिक्वायर्ड होता था, क्योंकि एसोसिएशन पहले ले चुके होते और प्रैक्टिस करके फिर वो उस स्टेज में जाते। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी क्या है, गलती हर स्टेप में होती है, हर स्टेप में हमें अटैचमेंट आ जाता है, हर स्टेप में हम गलती करते हैं, तो इसलिए हमें कॉन्स्टेंट एसोसिएशन रिक्वायर। और कोई पॉइंट
इसमें बीच बीच में भरत महाराज को ये रियलाइज हो रहा था कि हम जो भी हम एक्टिविटी करने के लिए आए थे वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा आसक्ति उस तरफ में है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया कि वो हिरण को ही मतलब वो प्रोटेक्शन दे सके, वो अपने जीवन का लक्ष्य मतलब मोल्ड कर दिया एक तरीके से।
देखो वो खुद भी रियलाइज कर रहे हैं कि इसके कारण मेरा जो है तपस्या थोड़ा हैम्पर हो रहा है, ये रियलाइजेशन हो रहा है उनको। लेकिन उसके बाद देखिए स्पेकुलेशन या जो माइंड के जो रेशनल जस्टिफिकेशन या आर्गुमेंट्स होते हैं, माइंड कैसे बता रहा है, बट स्टिल आई वो कह रहे हैं, अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं एक तरह से कि शरण यदि लिया है तो ये प्राइम ड्यूटी बनता है, चाहे भक्ति चाहे साधना आपका डिस्टर्ब भी हो रहा है लेकिन आपकी प्राइम ड्यूटी बनता है उनको वो कर। ये कहाँ से शास्त्र में था वो, मतलब ये जो है ये क्या हमारा कॉन्कॉक्टेड थॉट्स, तो इस तरह से हमारे माइंड में भी आता है कि यार हम तो फैमिली में हैं, हम तो कोई नहीं, चलो हमारा तो प्राइम ड्यूटी बनता है ये करना, तो हम तो कभी कभी भी चले जाएंगे तो भी ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये है, इतना कोई हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, कई सारे चीज़ जो है हमारा, हम जो है अपने आप को क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, कोई शास्त्र का आधार नहीं है उसका। है ना कि थोड़ा सा बाहर से खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, भूखे हैं ना तो भूखे हैं तो भूखा नहीं रहना चाहिए, तो भूख लग रही तभी तो खा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से वी ट्राई जस्टिफिकेशन, और जस्टिफाई करते करते हम एक स्टेप और नीचे चले जाते, फिर वहाँ पे जाके और जस्टिफाई करते, फिर और एक स्टेप नीचे चले जाते, फिर और जस्टिफाई करते और थोड़ा नीचे चले जाते। नहीं, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू जस्टिफाई कि कल रात को लेट हो गया तो आज सुबह थोड़ा लेट उठेंगे, कोई क्या फर्क पड़े, या है ना थोड़ा सा लेक्चर कभी सुन ले कभी नहीं, अभी बहुत बिजी चल रहे हैं ऑफिस में तो क्या फर्क पड़े, है ना। तो दिस वे कि मेरे पास तो और बहुत सारे ड्यूटी है, ब्रह्मचारी हम लोग तो है ही इसी सर्विस के लिए, तो वो कर रहे हैं हम क्यों इतना कर रहे हैं, है ना। तो जस्टिफाई, हमारा धर्म सिर्फ यही है, इतना तक ही है, कर लो चैंटिंग कर लो, और हाँ अपना हाँ जो नियम दिया हमने महाराज ने दिया बस उतना कर लो बस। तो इस तरह से कई प्रकार की जस्टिफिकेशन आएगा, और वो जस्टिफिकेशन दे के फिर हम एक स्टेप नीचे ऐसे ही करो। तो हमें उस जस्टिफिकेशन को क्वेश्चन करना चाहिए कि माइंड जो कह रहे हैं वो विक्ट माइंड, जो भक्ति चिदानंद महाराज कहते हैं जो स्टमन तुम्हें किशोर, तो ऐसे थॉट्स जैसे आया माइंड में, माइंड वेयर डू यू फाइंड दिस इन शास्त्र, ये कहाँ पे लिखा है, इज इट करेक्ट जो तुम सोच रहे हो, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट इन आवर सेल्फ।
जी जस्टिफिकेशन जो आता है ये आपका अटैचमेंट आता है, मतलब उसका सिम्टम है।
हाँ, ये तो अटैचमेंट तो माइंड जो है, एंजॉयिंग टेंडेंसी तो माइंड में है ही ना, तो कहीं ना कहीं इधर से नहीं तो उधर घुमा घुमा के एंजॉय करने की कोशिश करेगा, इधर से नहीं हो रहा है तो इधर से नहीं हो रहा है तो इधर से, वो कोशिश करेगा ही करेगा, है ना। तो हाँ उसकी जाल में नहीं फंसने का, जो माइंड तो है ना, जो है कुछ दिन पहले एक कोट्स आया था बहुत सुंदर, बोले फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनते हैं हम लोग है ना जब वी लिफ्ट द वेट विच इज है ना बियॉन्ड विच काइंड ऑफ वी कैन, उसको जब हम करते हैं या वी गो अगेंस्ट रेजिस्टेंस कुछ है तो हमारा फिजिकली वी गेट बिकम स्ट्रॉन्ग और मेंटली वी बिकम स्ट्रॉन्ग, आई थिंक ऐसे ही कुछ था है ना कि जो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जब जाते हैं, और स्पिरिचुअली वी बिकम स्ट्रॉन्ग विच इज वी डोंट वांट एंड वी डू इट अकॉर्डिंग टू शास्त्र वी डू इट बट वी गो अगेंस्ट आवर माइंड व्हाट द माइंड सेज टू गो अगेंस्ट द माइंड समथिंग मैं याद नहीं है अभी पूरा पर ऐसे ही। तो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना मतलब है ना मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू गो अगेंस्ट द माइंड, अगेंस्ट द माइंड क्योंकि माइंड तो इम्प्योर है इसको जानना है और उसको अगेंस्ट में ही जाने का तो तभी हम स्पिरिचुअली जो है एडवांस हो पाएंगे। और इसी तरह जब है माइंड जो है हमें कई प्रकार की बातें समझाता है और हम एक मूर्ख की तरह उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये सही है ना। तो इट्स अ वेरी ऑफकोर्स हमें इससे ये नहीं सोचना चाहिए भारत महाराज उस लेवल पर, भारत महाराज बहुत एडवांस स्टेज में है ना, इट्स जस्ट मतलब उससे देखो गलती तो हर किसी से होता है, भारत महाराज की इतने और ये भी आगे जाकर मिलता है कि भगवान की इच्छा से ही कभी कभी ग्रेट डिवोटीज के साथ भगवान की इच्छा से हो जाता है, एंड दे उस गलती को भी देव जब रियलाइज करते थे टेक इट सो सीरियसली कि मेरे से ये गलती क्यों हुआ, बहुत अफसोस करते हैं हम लोग क्या गलती हो क्या फर्क पड़ता है। तो उसके आगे हम देख सकते हैं कि जो है ना भरत महाराज कितना उस चीज को वो कर रहे थे रिपेंट कर रहे थे, और सिर्फ रिपेंट करना नहीं है उसको करके भी दिखा रहे कि कितना रिपेंट कर रहे हैं, सामने अगर कुछ गलती करते हैं तो रिपेंट करते हैं कभी कभी, तो रिपेंट सिर्फ अंदर मन में सोचने से नहीं है एक्शन से भी पता चलना चाहिए कि हाँ एक्चुअली हम रिपेंट कर रहे हैं एक्चुअली हम अफसोस कर रहे हैं, अपने एक्शन से भी पता चलना चाहिए जैसे मान लो हमने किसी से ऑफेंस कर दिया किसी से हमें फिर पता चला कि अरे मेरे से नहीं करना चाहिए, तो जब पता चला तो सिर्फ मन से नहीं अरे क्यों कर दिया क्यों कर दिया, यू शुड गो अहेड एंड सॉल्व ऑल्सो। तो हमारा करेक्शन का एक्शन से पता चलना चाहिए नहीं तो जैसे मान लो आज ये हमारा मिस्टेक हो गया ये जो है ना हमारा अटेंडेंस जो है मिस हो गया है ना कहाँ रखा है पता नहीं चला मिल नहीं गया, अरे आप सोच रहे मैंने क्यों ऐसे रखा कहाँ रखा है ना, वी शुड कि आज अफसोस क्या आज ही खत्म हो गया कल जाके अगर दोबारा रिपीट हो जाए ये चीज तो फिर बेसिकली अफसोस ही नहीं हुआ है, फाइन है कि आगे से क्या था कि क्यों नहीं हुआ है एंड आगे हम क्या करें कि ऐसे आगे दोबारा ना हो, तो उस पे सोचना उस पे एक्शन लेना कि क्या चीज हमने पिछली बार नहीं किया तो क्या एक्स्ट्रा स्टेप्स हम ले रहे हैं कि अगली बार वो चीज मिस्टेक ना हो, तो वो उससे पता चलता है कि हम कितना उसको सीरियसली उसको रिपेंट करें और उसी से ही फिर हम एक एडवांस होते जाते नहीं जैसे हाँ
जैसे हम इतना मिस्टेक करते हैं और माइंड जो उसको यानी हम जस्टिफाई कर देता है कि नहीं ऐसा है, लेकिन हमें वो फॉर्मूला क्या रखना चाहिए माइंड में कि हाँ ये जो इसके बेसिस पे हम जज करें कि हाँ ये इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए कोई एक मतलब स्टैंडर्ड जैसे शास्त्रों का हमेशा तो हम ध्यान ही नहीं माइंड में रहता ही नहीं,
एक ही सिंपल फॉर्मूला है कि वी आर सर्विंग कृष्णा फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा और नॉट, इस चीज से कृष्णा को खुशी हो रही है कि नहीं गुरु खुश है कि नहीं बस दिस इज ओनली
आपसे
दो तरीके से आता है, एक तो भगवान स्वयं देते हैं, दूसरा वैष्णव व्रत।
तो समझ रहे हो कि उसका आप देखेंगे आगे जाके कि भरत महाराज इस गलती को कितना सीरियस ले लिया। उसके अगले जीवन में उन्होंने ये नहीं जस्टिफाई किया, फिर दोबारा जस्टिफाई कर सकते थे कि अभी हिरण की शरीर में और क्या हो सकता है, अब तो मैं पशु की शरीर में हूँ, अब पशु की शरीर के हिसाब से सब चलते हैं। पशु के शरीर में तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता है कि कुछ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो, सो इट्स फुल्ली जस्टिफाइबल चीज। लेकिन उन्होंने उसको नहीं लिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक बार जस्टिफाई करके ये हो गया, अब मुझे जस्टिफाई नहीं करना है। तो हमें जितना हम अपने तो उससे हम देख सकते कि वो उसके अगली लाइफ में कितना स्ट्रिक्ट है अपने आप में, खुद पे खुद के ऊपर कितना स्ट्रिक्ट है कि हमें तो अपने लक्ष्य से हमने एक बार बिछड़ गया, हमें दोबारा उस लक्ष्य को पाके ही रहना है। इस तरह से उनका लक्ष्य वो था, डिटर्मिनेशन, देखिए कितना डिटर्मिनेशन कि इस लक्ष्य के लिए और गया था, हमने काफी आगे बढ़ चुके हैं और वहां से somehow एक मिस्टेक के कारण मैं पीछे आ गया, लेकिन अब तो मुझे उसको पाके ही रहना, यानी कि आ गया और फिर मैंने किया तो डिफिकल्ट है, नहीं हो सकता, चलो कोई बात नहीं है ना, अब काफी तो मैंने तो गया एटलीस्ट। आप इस स्टेप में भी आके उन्होंने ऐसे लिया जो कोई और हिरण ने नहीं किया, कोई और हिरण ने नहीं, है ना। और जो अटैचमेंट का हम देख सकते हैं कि उस अटैचमेंट में कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, लिमिट नहीं है ना। जब हमारा अटैचमेंट हो जाता है, थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि हेलिश एंजॉयमेंट वी वो डिलाइट, ही फील्स डिलाइटेड इन हेलिश एंजॉयमेंट। जब हमारा वो अटैचमेंट हो जाता है बॉडीली लेवल पर, तो यहाँ पे हम देख सकते कि हिरण के साथ भी है ना इतना अटैचमेंट है, हो जा क्योंकि मेटेरियल लाइफ ही ऐसा है, अब किसी के साथ भी अटैचमेंट हो सकता है। तो जब अटैचमेंट होगा तो हमें लगेगा कि हो सकता है, पढ़ के हमें कभी लग रहा होगा क्या अरे ऐसे क्या संभव है क्या, मतलब ये ऐसे तो कोई नहीं करेगा, मैं तो नहीं करूँगा, ऐसे लगेगा हाँ। आप सोएंगे हिरण के साथ क्या, क्या बेच के खाएंगे क्या, हाँ आपको लगता है कि कभी आप करेंगे हाँ, कभी गोद में लेके घूमेंगे हाँ, कभी चुमेंगे हाँ, कितना करते हैं
कुत्ते बिल्ली दोनों करते ही हैं,
कुत्ते का साथ ऐसे करता है कि वो अपने ह्यूमंस के साथ नहीं करते इतना। अब देखते हैं बड़े बड़े गाड़ी में करके एसी में करके उनको घुमाते हैं,
इसलिए कुत्ते पड़ गए हाँ।
जस्ट सी कि यही चीज हमें नजर में दिखता है, जो एक साथ बैठ के खिलाते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ गाड़ी में लेके जाते हैं, वो इनफैक्ट कुत्ते को सर्व करते हैं, कुत्ते को पीछे बिठा के आगे ड्राइव करते हैं, तो कुत्ता गाड़ी में बैठ के आ रहा है बाहर देखते हुए जाता है। अच्छा अच्छा और वो सोचता है कि देखो क्या, एंड ही फील्स डिलाइटेड, फील्स डिलाइटेड। और ऐसे लोगों के घर में जाओगे आप, कुत्ते के कीर्तन होता है वहाँ पे, काइंड ऑफ कथा वो बताते हैं कि ये कुत्ता ऐसा करता है, वो हाउस न्यूज़पेपर लाके देता है मुझे, वो ये करता है ये करता है, उसके बारे में ग्लोरीफिकेशन होती है।
कुत्ते के मरने पे शोक सभा और एनिवर्सरी भी मनाते हैं।
और रोजू ऐसी चीजें खाते हैं ना जो है ना एक इंसान के लिए अवेलेबल नहीं है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें खिलाई जाती है ना
हाँ,
बहुत ख्याल रखा जाता है उसकी डाइट पे।
तो कितना मेहनत करते हैं किसी चीज को, तो कितना अटैचमेंट जो है इससे और भी चीज सीखने को मिलता है कि जिससे भी अटैचमेंट हो वो बहुत सुंदर दिखने लगता है, वो बहुत अच्छा लगने लगता है, वही चीज है अटैचमेंट जो से ही होएगा वही चीज अच्छा लगने लगता है, आवरणात्मिका ये शक्ति है। तो बाहर से लगी ये वो मैंने बोले लेकिन उसको उसी में आनंद आता है। तो ये वो हायर कॉन्शियसनेस के साथ नहीं संभव हो सकता, कॉन्शियसनेस डाउन होएगा तभी ये संभव हो सकता, तभी ना। इसीलिए जमुनाचार्य क्या करते हैं, आगे बोलते हैं कि मेरा मन अभी इतना कृष्ण कॉन्शियसनेस में है कि उसके नीचे का आनंद में मुझे सुतने का मन कर। तो जब कॉन्शियसनेस हायर हो जाएगा तो ये सब चीज रहेगा, ये क्या कैसे कर सकते, ठीक है। तो अदरवाइज कॉन्शियसनेस कम होगा तो लगेगा कि कैसे कैसे बिना देख के कैसे रह सकते, बिना उसके टच करके, बिना उसको देखे, बिना उसके साथ रह के ये से एंजॉयमेंट को छोड़कर रह नहीं सकते, ऐसे लगेगा। बिना कुत्ते को चुम के रह नहीं सकते, डेली सोचकर आज का आनंद की स्रोत यही है, यही सोचते हैं। कुत्ते को नहीं देखा तो मान लो कोई की चला गया तो सोचेंगे विरह हो रहा है, मतलब इट्स नॉट असहनीय है। जैसे इसमें भी है कि जब चला गया तो असहनीय हो रहा है, तो अननेसेसरी दुख आ रहा है, किस लिए, जस्ट इसके दुख की कोई कारण नहीं है लेकिन दुख आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। तो ऐसे ही हो जाता है हमारा, तो इसे भी वेरी केयरफुल कि किससे भी। ऑफ कोर्स ये भी बताया जाता है एक एक जीव के प्रति कितना दया होना चाहिए कि चीटी और वो जो भी घर में है गृहस्थ का देखना चाहिए, वो सारे जो है कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, लेकिन उनके प्रति कितना अटैचमेंट होना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उसी चीज़ से अटैचमेंट ना, ठीक है। और उसके आगे क्या मिलता है, हाँ लक्ष्मीपति प्रिया प्रभु
समझाया कि जैसे आपने बताया कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा प्रोटेक्शन नहीं हो सकता, मतलब उससे नहीं है तो किसी और से तो है,
और क्या किसी से भी, अगर कृष्ण और गुरु को छोड़ के किसी से भी अटैचमेंट तो मेटेरियली वी आर बाउंड, आवर कॉन्शियसनेस इज लॉ, अगर उनके बिना देखे हम रह नहीं सकते हैं ऐसे काइंड ऑफ, कृष्ण गुरु को छोड़ के देन वी आर अटैच्ड, मेटेरियली अटैच्ड
तो जो छोड़ गया तो फॉल्सली छोड़ के आते
हैं,
उनके अट्रैक्शन भगवान के प्रति नहीं है इसलिए तो उनको दूसरे प्रति अट्रैक्शन हुआ, जो छोड़ के आया था तो फिर तो ट्रू छोड़ के नहीं आया था।
हाँ ये जब उन्होंने सब कुछ छोड़ के आई है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने देखो कितना कुछ छोड़ा, उस समय उनका रियलाइजेशन था कि ये सब अटैचमेंट की बंधन के कारण है, मुझे उनसे डिटैच होना चाहिए, उस रियलाइजेशन से उन्होंने छोड़ के आया, लेकिन आके फिर से इसी चीज़ जो है उनके जीवन में आया और उस चीज़ से अटैच होने। इसके विषय में एक सुंदर एक भजन भी है, मुझे एग्जैक्टली भजन याद नहीं, लेकिन उसमें ऐसा है कि देखो अगर चैतन्य महाप्रभु को पाना है तो वो बैरागी तुम अपने घर, मतलब सन्यासी हो डिवोटीज के लिए कह रहे हैं कि तुमने अपने घर पे अपनी पत्नी छोड़ के आए हो, हाँ दोबारा भी किसी स्त्री की और नजर नहीं लगा रहा, अगर तुम्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो, क्योंकि तुमने स्त्री को घर में छोड़ के आया और यहाँ पे आके कोई गलती से भी तुम किसी स्त्री को वहां देखने का प्रयास मत करो, इस तरह से मतलब एक भजन है, तो इसी चीज कौन प्रिंसिपल पे ही है, क्योंकि जब आए हो यहाँ पे भी आपको कहीं सारे मिलेंगे और कहीं अट्रैक्ट करेंगे, जैसे आज क्लास में तो जी बता रहे थे वृंदावन में ऐसा होता है कई लोग जाके वहाँ पे भी अट्रैक्ट हो, क्योंकि माया है शक्ति है तो कहीं भी उसे लेकिन तो भी अलर्ट कि हमने ऑलरेडी छोड़ के आया है ये चीज, मतलब जो भी छोड़ के आया ये चीज को छोड़ के आया दोबारा इसी चीज से क्यों है ना, तो दैट मींस उस चीज को माइंड में हमेशा रखना चाहिए, रखना है, नहीं रखेंगे तो हो सकता है लक्ष्मी मित्र जी को, हाँ तो इट्स नॉट इजी, हाँ तो इसीलिए जो डिवोटी लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचर्य को मेंटेन करते हैं ना, हिस्ट्री बोलते हैं ग्रेट ग्रेट डिवोटीज। तो इट्स नॉट अ वेरी फ्यू आप मिलता है बहुत, है ना। तो उसी तरह, ठीक है, उसी तरह जैसे गृहस्थ आश्रम में भी डिस्कस कर रहे थे कि उसमें एंजॉयमेंट की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए घर में, तो बोले घर में तो टेंडेंसी नहीं है लेकिन बाहर है टेंडेंसी। घर में तो सर्विंग एटीट्यूड है, घर में अटैच नहीं है स्त्री से और लेकिन बाहर किसी और स्त्री से अटैचमेंट हो रहा है या स्त्री को देखने का अटैचमेंट हो रहा है। तो होंगे प्रभु जी भी होंगे, कहाँ पे है, कृष्ण पे है या किसी और जगह पे, वेयर आर आवर आईज, है ना। कहीं सर्विस से भी हो सकता है, किसी माता जी से बात करना पड़ रहा है किसी सर्विस के कारण। सो डू वी डिराइव प्लेजर बाय टॉकिंग, और इट्स जस्ट फॉर सर्विंग, यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन सर्विस। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, है ना। सो ओनली लॉयल टू कृष्णा गुरु, नहीं ठीक है। तो ये चीज भी क्योंकि छोड़ा आपने बहुत कुछ छोड़ा, तो आप सब मतलब सब डिवोटी, तो उसको याद रखने से हेल्प करता है कि आगे दूसरा अटैचमेंट कि इसी चीज के लिए मैंने छोड़ के आया क्या, ठीक है। वो उस भजन में बहुत सुंदर ढंग से था कि बैरागी मतलब याद रखो उसको, तुमने घर में अपनी स्त्री को छोड़ के आया, ये बोल के छोड़ के आया कि मैं महाप्रभु की सर्विस करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे आके हैं आप दूसरी स्त्री के प्रति नजर डालना, क्या महाप्रभु की कृपा कभी नहीं मिलने वाला, अभी क्या तो है ना। वो याद रखने से क्या होगा, हेल्प मिलेगा, ठीक है। क्या सोच रहे हो,
बोलिए प्रभात कई जगह मेंशन करते हैं कि जब हम सोचने लगते हैं कि हम तो सेटल हो गए, सेफ हो गए, तो फिर जो माया का अटैक होता है, जब हम सोचते हैं सेटल हो गए तो हमें कोई खतरा नहीं है, थोड़ा बहुत करेंगे चलेगा, तो उस टाइम में कुछ ऐसा होता है कि
बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी कभी भी इस मटेरियल वर्ल्ड में जब तक है तब तक हमें केयरफुल रहना चाहिए, मोमेंट केयरलेस हो गया तो। और उसमें प्रभुपाद कई जगह बताते हैं, प्रभुपाद मतलब जो सन्यासी या रिनाउंसिएशन जो है इट शुड बी ट्रू रिनाउंसिएशन, है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि एक सन्यासी, प्रभुपाद मतलब बता रहे हैं कि सन्यासी को जाना पड़ता है कभी, है ना, डोनेशन कलेक्ट करने के लिए कहीं जगह पे जाना पड़ता है, हाउस होल्ड लाइफ हाउस होल्डर के पास भी जाना पड़ता है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर वहाँ पे उस हाउस होल्डर को देख के उनकी मन में आ जाए, सिर्फ इतना आ जाए कि अरे अगर मैं अपनी वाइफ के साथ रहता तो कितना अच्छा रहता, मैंने क्यों छोड़ा, तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर ये थॉट ही आ गया ही इज फॉलन ऑलरेडी, मींस मतलब कॉन्शियसनेस कितना ऊपर रहना चाहिए प्रभुपाद से कि प्योर डिवोटीज का कितना ऊपर रहता, जो सोच के छोड़ के आया दोबारा उस पर सोचना ही सोचते ही नहीं। तो जो ब्रह्मचर्य से पार्ट होगा तो उनको जाना पड़ता है इतना, है ना। वो कभी कभी गाड़ी में जाते हैं कहीं डिवोटीज का, तो गाड़ी में ऐसी होते हैं सब कुछ होते हैं, पर वो कभी नहीं सोचते हैं कि काश मेरा कोई गाड़ी होता, नहीं सोचते, काश मैं जॉब करता शायद मेरा भी एक गाड़ी होता, ऐसे नहीं सोचते। वैसे अगर सोच लिया देन उनकी जो है ना आश्रम जो है वो प्रॉपरली सिचुएटेड है ना। तो क्योंकि ये सोच ही क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप इज थॉट फिर एक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसको, तो वो तो उसके आगे फिर बता रहे हैं कि जो हिरण बने थे, तो हिरण बन के वो घर और सब छोड़ा, उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा और गए वहाँ पे। तो उसमें लिखा हुआ था कि ऑल दो ही वॉज एलोन, पर उनके साथ भगवान परमात्मा के रूप में थे, भगवान परमात्मा। तो कभी भी हम अकेले हैं, तो बात कहते हैं कि हर कोई, कभी आगे लगता है कि हमें सब छोड़ दिया है, सब नहीं, कोई नहीं, हम अकेले हैं, हम सोच सकते हैं कृष्णा हमारे साथ है, गुरु हमारे साथ है। तो एक बार गौर गोविंद महाराज लेक्चर में बताते हैं, उनको जब प्रभुपाद ने भेजा था, जैसे कभी पार्थ प्राण प्रभु सोचते हैं या कृष्ण प्रभु सोचते हैं कि अरे हमें स्टॉल लगाना है, अकेले जाना पड़ता है ना, अकेले कोई तो साथ में होना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हिरण के साथ में कोई नहीं था अकेले, लेकिन कृष्ण थे परमात्मा के रूप में। तो गौर गोविंद महाराज एक लेक्चर में बताया था कि प्रभुपाद को उन्होंने गए मिलने, जब भुवनेश्वर की प्रोजेक्ट दिया प्रभुपाद ने कि यू गो एंड डेवलप दैट प्रोजेक्ट, तो गए प्रभुपाद के पास कि आप मुझे कुछ ब्रह्मचारी दीजिए साथ में। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं फॉरेन कंट्री गया था अकेले, आप तो अपना नेटिव लैंड में आके ले जाओ। हाँ, और फिर ये चीज बोल के प्रभुपाद ने उनको कहा कि यू आर नेवर अलोन, कृष्ण इज विथ यू। प्रभुपाद ने कहा ये डिवोटी इज नेवर अलोन, कृष्ण ही तो। तो गौर गोविंद महाराज लेक्चर में बता रहे हैं कि बट आई एम नॉट डिवोटी, वो थी सोच रहे, मतलब बाकी उनके डिसाइपल्स को लेक्चर में बता रहे हैं, प्रभुपाद ने तो ये तो कह दिया, पर गौर गोविंद महाराज कह रहे हैं तो अगर कभी ऐसे सिचुएशन होता है हमें अकेले ही करना पड़ता है या अकेले ही हमें उसको करना पड़ता है, कृष्णा इज विद अस, गुरु इज विद अस, है ना, एंड होल परंपरा इज विद अस, कितने चाहिए आप जितने भी चाहिए आप उनके नाम पुकार लीजिए, इज विद ही, हाँ है ना। सो ऑफ कोर्स मतलब हमारे साथ में होने चाहिए डिवोटीज, बट अगर ऐसा कोई बात आ जाए, कभी ऐसा करना कोई सेवा में कोई ना, तो हम डिस्करेज ना हो कि हम अकेले क्या करें, ठीक है।
तो भरत महाराज के साथ भगवत महाराज की केस में तो कृष्णा के ही द्वारा भेजा हुआ एक तरह से था,
नहीं देखो उस चीज को उसको समझना थोड़ा डिफरेंट है ना, कि वी हैव टू बी केयरफुल कि कृष्णा इज देयर, वी हैव टू कीप आवरसेल्फ कनेक्टेड टू कृष्णा, ऑलवेज लुक कि क्या हम कर रहे हैं, यानी कि कृष्ण है साथ में। देखो इसके ऑब्जेक्टिव वो जो पहले हमने बताया कि अकेले रहना डिवोटी के संग में रहना, दोनों की कॉन्टेक्स्ट कम्प्लीटली अलग है। उसमें क्या हम जानबूझ के डिवोटी के एसोसिएशन को अवॉइड कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू डू सेंस एंजॉयमेंट, सो विदाउट एसोसिएशन डिवोटी विल गो डाउन। और इसमें क्या है कि जब अकेले हमें शक्ति नहीं मिल रही है, हम बोले हम अकेले नहीं कर सकते, जब तक हमें डिवोटी नहीं आएगा कोई और हेल्प नहीं करेगा हम नहीं कर सकते, अकेले हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम अकेले रह के अपना एक ये भी हम एक्सक्यूज दे रहे हैं, हम क्योंकि कोई है नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जितना हम कर सकते हैं हम उतना करें, है ना, और इसलिए आप लोग कर पा रहे हो जो भी कर रहे हो। आप लोगों कितना लोगों को सपोर्ट मिलता है, जैसे अभी हरी चंद रूप आए अकेले ही वो लगाया हमें हेल्प यू करके, कभी कभी हम देखते हैं श्रेष्ठ को अकेले ही सारे करते हैं एजुकेशन सीयूजी, उनको कॉल करते हैं, उनको सैटरडे होल दिन वो बिजी रहते हैं, कोई नहीं करते कि मेरे को कोई हेल्प करे, कभी हमें अमृतला प्रभु हेल्प कर दिया, कभी रूपेश शर्मा को प्रभु आ तो करते हैं, तो ठीक है कोई नहीं करते तो वही अकेले करते रहते हैं, करते हैं, चलता है। तो हम सब मतलब आप लोग भी करते ही है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके पीछे अगर इस चीज को हम समझे कि हम अकेले हैं तो हमेशा कृष्णा है, गुरु है, हम अकेले नहीं है, we will get more strength. तो ये एक्सक्यूज कभी नहीं देना है कि हम अकेले हम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके आगे फिर उनका क्या जन्म हुआ, उनके रूप में जड़ भरत है ना। और हिरण के रूप में, और फिर वो जो है अपनी अपनी हिरण की घर, अपनी जगह, नेटिव प्लेस सब छोड़ के वो चले गए, वो भी है ना आश्रम में, खुला आश्रम और जाके वो हाँ वहाँ पे जो है ना स्नान करते थे हर रोज, और फिर ना जो भी भगवान की जितना संभव होता था वो करते, और उसी इस तरह से उन्होंने शरीर त्यागा और फिर जन्म हुआ उनका जड़ भरत ब्राह्मण के पुत्र के रूप, ठीक है।
और उसमें मुझे ये बताते कि वो हिरण में सूखे पत्ते खाते थे।
हाँ सूखे पत्ते खाते थे, तपस्या करते थे। तो अपने जो अफसोस का रिपेंटिंग का, जब हम रिपेंट करते उसके कुछ एक्शन से ही पता चलना कि हमने कुछ गलती किया तो ठीक है ना, एक सम डिसिप्लिनरी एक्शन तो इसलिए बताया था, कभी ऑफेंस हो जाए तो एक्स्ट्रा राउंड चैंटिंग, या कभी कुछ इस वजह से, व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो आवर डिसिप्लिनरी एक्शन टू आवर सेल्फ, है ना। तो ये जब तक रहेगा ना देन वी विल एडवांस, है ना, ठीक है। तो उसके आगे जब हुआ और उन्होंने क्या किया, वो कोई भी एक्टिविटी में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे किसी भी एक्टिविटी में, ठीक है। तो कभी कभी जो है ना उनकी पिताजी जो उनसे परेशान हो जाते थे, पिताजी उनको वहाँ कुछ शिक्षा देने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको लगता था अगर शिक्षा लेंगे तो आगे जाके हो सकता है हमें जो है मैरिज करा देंगे पिताजी, फिर बन जाएंगे, बोले थे ऐसे ही रहो तो फिर मैरिज कभी नहीं कराएंगे तो इस तरह से वो मतलब कई रीजन है इसको, इस तरह की है ना बिहेवियर। तो वो ऐसे करते थे कि जो अननेचुरल मतलब अनकॉमन एक्टिविटीज, अब उस चीज को प्रभुपाद ने कहीं जगह पे बता रहे हैं कि उनकी जो एक्टिविटी था, उनकी जो लेवल था, उसको कहते परमहंस स्टेज, दैट इज ए परमहंस स्टेज, doesn't matter, completely above the body level, है ना। जैसे गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज बाथरूम में जाके चेकिंग करते, उनकी जो कॉन्शियसनेस इज सो हाई, इट्स बियॉन्ड आवर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो उसको कहते हैं परमहंस स्टेज, समझ रहे हैं। तो उस परमहंस स्टेज में क्या होता है, परमहंस स्टेज में कंप्लीटली अबव द बॉडीली प्लेटफॉर्म, बॉडीली स्टेज। तो बॉडी के स्टेज में जो अच्छी बुरा चीज है वो वहां पे लागू नहीं होती, कि क्या अच्छा क्या बुरा ये दोनों सुपर, समझ रहे हो। और प्रभुपाद पिताजी में बताते हैं कि एक हमें परमहंस स्टेज का नकल नहीं करना चाहिए, जब तक हम उस स्टेज में नहीं आते, स्टेज में जब आएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चलेगा। तो उस स्टेज में कोई भी जो मेटेरियली कैलकुलेटेड अच्छा या बुरा, ड्यूअलिटी से वो मुक्त हो, है ना। तो जैसे स्वच्छ अस्वच्छ, क्लीन या अनक्लीन, उनको दोनों ही क्या लगता है कि सेम है, दोनों ही मैटर, या दोनों ही कृष्ण की सर्विस में, दोनों ही कृष्ण की एनर्जी, दे आर कंप्लीटली अबव दिस टू, एनिमी या फ्रेंड, दोनों। तो एनिमी उनको मारने भी लगे नो प्रॉब्लम, तो दे डोंट थिंक दिस इज एनिमी, ये हमारे बॉडी प्लेटफॉर्म में संभव नहीं है ना, तो दे आर कंप्लीटली इन दैट लेवल, ठीक है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ड्रेस पहनना या नहीं पहनना, सही, कंप्लीटली अवा, जो सोसाइटी की जो पॉइंट ऑफ व्यू से डस इट्स ए परमहंस स्टेशन, ठीक है। अच्छा लगता है सुनने से परमहंस स्टेज,
मुझे ऐसा लगता है ऐसे परमहंस स्टेज में आने पे वो केवल खुद के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं कि शो के बारे में सोचते
हैं, नहीं और के बारे में सोचते हैं, तभी तो वो तो एक एनिमी के लिए भी वो भगवान से प्रे करते हैं कि उनका कितना कल्याण हो, वो हमने तो उनको तो एनिमी सोचते नहीं, उनका तो परमहंस स्टेज उनका एक विजन ही जो है सबको प्यूरिफाई कर देता है,
ऑलरेडी अपलिफ्टेड
प्रचार का
उनको बस ये नहीं लगता, नहीं नहीं प्रचार परमहंस डजंट मीन कि सिर्फ बैठे हुए हैं, प्रभुपाद परमहंस स्टेज, तो परमहंस स्टेज तो प्रचार भी करते हैं, ये नहीं परमहंस स्टेज मतलब दे आर बियॉन्ड द ड्युअलिटी, बियॉन्ड द ड्युअलिटी, तो वो उसको गलत नहीं समझो, परमहंस ये नहीं कि सिर्फ बैठा हुआ है, भजनानंद इज नॉट ओनली परमहंस, परमहंस इज बॉडीली ड्युअलिटी से ऊपर है, अच्छा है बुरा है, जैसे दुख है सुख है दोनों पे इक्वली स्माइलिंग, इसको समझाते कभी कभी, दुख को इज ए शेडो ऑफ कृष्ण समझते हैं, सुख को तो वो शेडो ऑफ कृष्ण, कृष्ण में कोई अंतर नहीं दिखता, देयर इज अ विजन, तो वो उस लेवल पे है, तो उनके लिए कोई एनिमी हो या फ्रेंड दोनों को वो उस हिसाब से देखते, तो पर उसको हम नकल नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे अभी जरा भरत का वहाँ पे देख रहे थे कि उन्होंने पकड़ के ले गया उनको, है ना, उनको मारने के लिए, है उनको कोई पता ही फर्क ही नहीं पड़ा, इस कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्ण, इससे समझ में आता है कि इस बॉडीली प्लेटफॉर्म से इस कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन कृष्ण, तो उनको मृत्यु से भी कोई भय नहीं है, मरो या बचो, जैसे प्रभुपाद कहते हैं बम आ जाए गिर जाए it will think it is a Krishna coming and taking in the form of Krishna,
लेकिन अपने रक्षा के लिए तो कुछ
तो परमहंस स्टेज की अगर हमारा हमारे लिए ऑफ कोर्स ये सजेस्टेड है, हमारे लिए सजेस्टेड है हमें अपने आप को रक्षा करना चाहिए, तो इसीलिए तो इस चीज को समझा रहे कि हम अपने आप को परमहंस स्टेज नहीं समझ सकते, नहीं समझने, क्योंकि अगर हम समझेंगे मतलब मान लो हमें एक्सेप्ट कर हम अगर परमहंस स्टेज की तरफ तरह किया जो हम है नहीं, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे नहीं और कृष्ण प्रोटेक्ट करेंगे नहीं परमहंस स्टेज में क्या, क्योंकि वो इतना सरेंडर्ड है कृष्ण के लिए, पर कि कृष्ण करते हैं उनको प्रोटेक्ट, जड़ भरत को प्रोटेक्ट किया उन प्रभुपाद को कितना प्रोटेक्ट किया, तो उस स्टेज में ही वो पूरा तरह से जब कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो कृष्ण प्रोटेक्ट, हम पूरा तरह कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, और ये हम आर्टिफिशियली नाटक कर रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे अपने आप को, देन वी आर गॉन, है कि नहीं। तो हमें क्या है, हमें ऑफ कोर्स हमें परमहंस स्टेज की ओर जाना है, ये नहीं कि हम परमहंस स्टेज नहीं है तो हम कभी नहीं जाएंगे, हमें धीरे 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 इस ड्यूअलिटी को हमें वो करना है, कॉन्कर करना। तो जैसे शुरू में हम पूरा प्रोटेक्शन लेंगे और सोचेंगे हमें ही प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, फिर एक समय आएगा धीरे धीरे हमें लगेगा कि हम पूरा तो नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण के ऊपर प्रोटेक्शन था अल्टीमेटली कृष्ण के ऊपर, तो हम एक लेवल तक प्रयास करेंगे उसके बाद कृष्ण के ऊपर सरेंडर रहेंगे, इतना ही हम कर सकते हैं, उसके आगे जो होगा कृष्ण। फिर आगे जाके ये धीरे धीरे आएगा कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए जितना एफर्ट हम करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने का या अपने आप का, वो एफर्ट हमारा धीरे धीरे कम होने लगेगा कि हम जितना एफर्ट करके भी क्या है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली होगा कि हम उतना और उतना ही डिग्री में हम कृष्ण के ऊपर प्रोटेक्शन की कृष्ण के प्रोटेक्शन के ऊपर डिपेंड होंगे। तो उस तरह से धीरे 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 हम परमहंस स्टेज का मतलब ये नहीं कि अगर कोई बिल्कुल इस तरह से स्वच्छता या अस्वच्छता नहीं है तो परमहंस नहीं है, ऐसा नहीं, तो कई लेवल है बेसिकली, कई एंगल है उसका, है ना, परमहंस स्टेज का तो मेन है ड्यूअलिटी से ऊपर, लेकिन प्रीचिंग पर्पस के लिए उसके लिए जो है इवन इफ समवन इज परमहंस वो नहीं करता है कि नहीं हम ऐसे ही चलेंगे, है ना, कि स्वच्छ हो या अस्वच्छ हो चलो ड्रेस सफेद है ना धोया हुआ है या गंदा चलो पहन लो, है ना, अगर किचन में है किसी को जाकर मिलना है तो इसलिए प्रभुपाद व्यवस्था पहले पढ़ते हैं कि एवरीथिंग शुड बी क्लीन एवरीथिंग, है ना, तो वो सारी चीजें तो मेन है ये स्टेज आता है जहाँ पे ड्यूअलिटी से ठीक है मैं स्टेज। फिर आगे जाके उन्होंने बताते हैं कि रोगन मिलते हैं, है ना, तो उस समय तो जो है उनका रक्षा हो जाता है, और फिर आगे जाके वो फिर दूसरा पकड़ लेते हैं उनको, है ना, वो करने के लिए
पालकी
के लिए, और उसमें फिर उससे पहले भी आता है कि उनकी ब्रदर जो है उनका एडवांटेज लेते हैं और उनको जो है सरा हुआ खाना देते हैं या कुछ इस तरह से देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी बात है, जब सरा हुआ चीज को वो खुशी, वहां पे भी लिखा हुआ है ग्लैडली एक्सेप्ट, ठीक है, वो चीज और जो आवरणात्मिका का जो हैप्पीनेस है दोनों में क्या अंतर
है? इसमें भाव है कि इस तरीके से शरीर को करना है, शरीर को चलाना है, एंजॉय करने का
बेटर है, जैसे कुछ नहीं है एंड ही रिमेन सेटिस्फाइड, इसमें भी सेटिस्फेक्शन आता है, ही रिमेन सेटिस्फाइड और उसमें लेकिन ये सेटिस्फाइड सिर्फ बॉडीली नीड्स की पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड ताकि इसमें एंजाइटी ना करे, लेकिन उनकी सेटिस्फेक्शन कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो है वो अगर कम होता है तो ही इज नॉट सेटिस्फाइड, सिर्फ मेटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिससेटिस्फाइड नहीं रहते, ये जो मेटेरियल नीड्स है वो चाहे कम मिल जाए तो ज्यादा मिल जाए इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, क्योंकि ही डजंट केयर मच बट रिगार्डिंग स्पिरिचुअल थिंग इज ऑलवेज लुक फॉर हायर एंड हायर एंड हायर, he never thinks ki this is all, this is everything in my life or isse beyond kuch hai hi nahi, karne ke liye bhi nahi hai, karna bhi nahi hai mere, never thinks that, to jo sochega yahi all hai to wo yahan pe anxiety rahega usko satisfy nahi ki ye kya hai, mujhe aur thoda acha chahiye, mujhe thoda aur acha chahiye, mujhe to Prabhupada jo batate hain ki jo devotee chahte hain ki wo is sagar ko paar kar jaye, जब तक सागर में है तो कष्ट होगा, तो जाते ही बस सागर पार हो जाए तो उसमें जो मिनिमम मिल जाता है ठीक है एंड गो अहेड, तो वो कॉन्सेप्ट है, इसलिए जो मिल रहा है ठीक है, इस छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई करेंगे या छोटी छोटी चीजों में तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए वो उन चीज को एक्सेप्ट कर, ठीक है चलो। तो फिर आगे जाके जब उनसे चल रहे थे तो पालकी लेके जा रहे थे तो चल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो ना चिटिया थे, तो उसमें वो जब बता रहे थे कि रोहन जो उनको बोल रहे थे, तब जो है रोहगन उनसे पूछते हैं कि आप दूसरे की तरह नहीं कर पा रहे हो, वो लोग जो कर रहे हैं इस तरह से आप नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली बाकी लोग शूद्र और वो थे ब्राह्मण, है ना, और वो दोनों एक साथ ये बता रहे हैं कि शूद्रस डू नॉट सिंपैथाइज विद अदर लिविंग बीइंग्स। शूद्र का जो है वो चींटियों से नहीं उनका वो होता है, है ना, इतना कॉन्शियसनेस नहीं है। बट ए वैष्णव कैन नॉट एक्ट लाइक ए शूद्र, वो नहीं कर सकते, तो चींटियों को देख के उनको कंफ्यूजन आएगा ही, ठीक है। तो ये था, और उसके बाद रघुगण जो उनसे प्रश्न पूछा था कि आप नहीं जानते हो कि मैं आपका मास्टर हूं, है ना, मैं आपका मास्टर। तो उसके उत्तर में जरा भरत बता रहे थे कि कौन है मास्टर और कौन है सर्वेंट, ये समझना ही मुश्किल है, है ना। और फिर प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि इसीलिए इस संसार में कष्ट है कि मिछे मायार वशे जाच्छ वेशे खाच्छ हाबु डूबु भाई, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख बनाए। कि जिस मन में हम सोच लेते कि हम मास्टर नहीं है, हम सर्वेंट है, एंड देन देयर इज नो मोर सफरिंग। और अगर हमने ये नहीं सोचा, हमने सोचा माया की का उससे कि हम मास्टर हैं और मास्टर बनने का प्रयास करें, देन वी खाचो हाबू डूबू भाई, वी गोता खाएंगे, मतलब एक बार डूबेंगे, एक बार ऊपर आएंगे, फिर जाएंगे नीचे, फिर ऊपर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन है जरा भर कि देखिए वो इतना ऊपर है, हाँ, और कितना सुंदर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कितना हम्बली उसको वो कर रहे हैं, है ना, वो सारे कार्यों को ले रहे हैं कि जब उन्होंने बोला कि पालकी चलो चलो अभी नहीं, है ना, और उनका कॉन्शियसनेस कितना है। तो इन सब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत कुछ मिलता है लेकिन अप्लाई हम अगर थोड़ा सा भी कर लें तो वेरी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। तो हम यहाँ पे विराम लेते हैं, ठीक है।
इसमें एक दो पॉइंट थे, जैसे जड़ व्रत को एक तो पहले हिरण का शरीर मिला, फिर उसके बाद जड़ व्रत ब्राह्मण का पुत्र, तो दोनों ही स्टेज में उनको पुराना स्मृति जो है वो याद था, मतलब जो भी कॉन्शियसनेस था वो रिवाइव उनका था ऑलरेडी, तो इसी में आगे बढ़ते चले गए। और ऐसे तो हमें दिखता नहीं है कि
ये भगवान की स्पेशल मर्सी था उनके ऊपर, इसलिए उनको याद था।
और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि जड़ व्रत जो है पालकी उठाते समय वो जो बागे जो थे शूद्र से,
हाँ।
और वो ब्राह्मण कल क्वालिटी उनमें था, हाँ। तो दोनों जैसे शूद्र और ब्राह्मण एक साथ नहीं चल सकते, ऐसे हो सकता, ऐसा तो होता ही है, जैसे ब्राह्मण और शूद्र जो है मतलब सोसाइटी में दोनों एक साथ में नहीं चल सकते, शूद्र जो है हमेशा जो है वो सिंपथाइज नहीं होता है, तो हमें रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है कि बाकी जो लोग होते हैं मतलब क्वालिटी तो जनरली शूद्र का ही होता है, हमारे अंदर में था ही, लेकिन थोड़ा बहुत यदि हमें नॉलेज होता है तो वहाँ पर कन्फ्लिक्शन हो जाता है।
बिल्कुल, तो एक कार्य नहीं कर सकते दोनों, है ना, एक ही कलयुग में ज्यादातर शूद्र ही है, हम सब कलयुग में शूद्र संभव है,
तो जैसे ऑफिस ऑफिस में ऐसे कंप्लीशन कभी हो ही जाता है,
हां तो हम शूद्र का काम कर रहे हैं, मत करो ऑफिस मतलब ही शूद्र का काम, अगर हमें नहीं करना है तो हम ब्राह्मणों का काम करें, लेकिन हमें करना पड़ता है। अगर पोपट के अगर पे चेक ले रहे हैं दैट मींस शूद्र पे चेक ले रहे हैं, चाणक्य पंडित थे ब्राह्मण, कौन नहीं लेते, तो ब्राह्मण होते तो उनका पावर होता है, पर हम ऐसे नहीं कर सकते, अभी हम शूद्र ही हैं, कलयुग में शूद्र, बस गुरु की इंस्ट्रक्शन के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य ज्ञान बांटना होता है, ज्ञान उसको ही हम मानो पूरा तरह से, तो हमें तो पैसे चाहिए, सो वी हैव टू टॉलरेट दैट ऑल्सो, है ना? ठीक है, जिनको नहीं चाहिए उनको, है ना, तो क्या बन सकते कांचन को पंडित की तरह? नहीं बन सकते, नहीं चाहिए हमें, है ना, तो उससे इंडिपेंडेंस रहता है, हमें किसी का गुलामी नहीं करना पड़ता। लेकिन अभी ऐसा हो गया सोसाइटी, हम चाहे करें और बाकी समय एटलीस्ट जब सैटरडे संडे है तब हमारे पास पूरा इंडिपेंडेंस है, तब हम ब्राह्मणों की तरह करें या घर में हम ब्राह्मणों की तरह करें, जहाँ तक कर सकते हैं, जहाँ तक हमारा इन्फ्लुएंस होता है वहाँ तक करें। ठीक है, ओके, जब सन्यासी हो जाएंगे आप तब आपके लिए कोई टेंशन नहीं है ना? ठीक है,
दया देखते हैं के प्रति, तो क्या वो भी दया क्या स्पेशल दया है फिर भी तत्वगुण के वजह से?
नहीं नहीं, स्पिरिचुअल कहाँ है
यहाँ
पर, हाँ बंधन है ना, तत्वगुण से बंधन हो जाता है, इसीलिए तो बंधन हो जाता है। ओके
ओके, अटैचमेंट वो अगर ये अगर हमारा अटैचमेंट के मुझे से प्रति रहता है,
देखो डिवोटीज की प्रति भी अटैचमेंट जो होता है ना उसमें डिपेंड करता है उसका लेवल क्या है, कौन सा डिवोटी के साथ है और क्यों है। अगर ऐसे डिवोटी के साथ है जो आपको फ्लैटरिंग करता रहता है, जो आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ये हो, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो डिवोटी आपके लिए स्पेशल प्रसाद बना के रखते हैं, संडे जब भी आप बैठते हो आपको एकदम बिल्कुल प्रसाद ला कर देता है, अरे ये डिवोटी आज नहीं आया तो आपको उन डिवोटी से अटैचमेंट हो रहा है, उसके कारण कुछ और है, तो उस